समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। परिक्रमा को नियमित रूप से सुनने वाले लोग ये जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम करते हैं परिक्रमा पूरी दुनिया की, जान पाते हैं देश विदेश में होने वाली तमाम घटनाओं के बारे में और एक नजर डालते हैं खेल की दुनिया पर भी। इतना ही नहीं बल्कि याद करते हैं आज हम उन लोगों को भी जो किसी न किसी रूप में आज के दिन से हैं हमसे जुड़े हुए। परिक्रमा के इस अंक में आपके साथ हूं मैं प्राची प्रिया और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा।
हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू यू प्राची एंड टू ऑल द लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम एंड आई एम शगुन चोपड़ा एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट प्राची। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर इन ऑल ऑफ दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट द हेडलाइंस। Om Birla files nomination as NDA candidate for Lok Sabha Speaker. Opposition INDIA block fields Congress MP K. Suresh for the post.
18वीं Lok Sabha के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज दूसरे दिन भी जारी।
International Sugar Organization Council meeting begins in New Delhi. Union Minister Prahlad Joshi calls for a global cooperation for sustainable and varied production of sugarcane.
विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन आंसजे अमेरिकी अधिकारियों के साथ समझौते के बाद ब्रिटेन के जेल से रिहा।
सेंसेक्स जंप्स ओवर 500 पॉइंट्स टू हिट फ्रेश ऑल टाइम हाई, निफ्टी 2 एट न्यू पीक।
टी20 विश्व कप क्रिकेट में अफगानिस्तान रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया प्रतियोगिता से बाहर।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today we'll talk about Day of the Seafarer.
जो भोजन आप खाते हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं, जो तेल आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी गाड़ी में चलती है, वो सब कुछ जहाजों के माध्यम से ही तो आता है। वास्तव में अब आपके आसपास के अधिकांश उत्पाद संभवतः किसी न किसी रूप से जहाज पर ही होंगे।
Seafarers, you know, they are the ones who brave the waves to connect the world. And one never stops to think about what must be going behind this extent of globalization, wherein your phone is from one country, your shoes are from some other country, and your laptop is run by another far-off country's processor, while one sits and uses these things every day at their home. The seafarers at duty, they always deliver these products in their prime quality and on time, and in the process, save everybody a great deal of money, so a whole lot of contribution they make.
नाविक दिवस की स्थापना मलीना में 2010 के राजनायिक सम्मेलन द्वारा नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर संशोधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अपनाने के लिए अपनाए गए एक प्रस्ताव में की गई थी।
The stated purpose of the Seafarer Day of the Seafarer is to recognize the unique contribution made by seafarers from all over the world to international seaborne trade, the world economy and civil society as a whole. And this day gives us a chance to say thank you to them. One can define a seafarer as being someone who is employed to serve aboard any type of marine vessel. This usually refers to active seafaring workers, but can be used to describe a person with a long history of serving within this profession.
समुद्री उद्योग में और आम जनता द्वारा नाविकों की भूमिका को अक्सर कम सराहा जाता है। नाविक विश्व व्यापार में एक आवश्यक घटक है जो अर्थव्यवस्था की गनीमत रखते हैं और हमारे द्वारा प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले सामान और ईंधन की भी आपूर्ति करते हैं।
The maritime sector transports approximately 90%, you know, 90% of the world's goods. Seafarers help ensure the smooth passage of those goods. Without them, I think the global trade system would break down. The economies would suffer in turn.
समुद्र यात्रा वैसे भी व्यापक रोजगार के अवसर भी तो प्रदान करती है ना, जो न केवल व्यक्तिगत आजीविका में बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में भी योगदान देती है, विशेष रूप से संपन्न समुद्री उद्योग वाले क्षेत्रों में.
राइट, एग्जैक्टली. एंड द रेजोल्यूशन दिस एनकरेजेस गवर्नमेंट्स, शिपिंग ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज एंड शिप ओनर्स इन ऑल द अदर पार्टीज हु आर कंसर्न्ड टू ड्यूली एंड अप्रोप्रिएटली प्रमोट द डे ऑफ द सी फेयरर एंड टेक एक्शन टू सेलिब्रेट इट मीनिंगफुली. Day of the Seafarer is recognized by the United Nations as an observance day.
वैसे भी नाविक वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है. ये सुनिश्चित करते हैं कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले और वे सामान और ईंधन वितरित करें जिन पर हम भरोसा करते हैं. अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस सार्वजनिक कल्याण में उनके अद्वितीय योगदान को पहचानने के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है. 2024 के लिए अभियान समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित कार्यस्थल बनाने में नाविकों का योगदान पर जो एक गौर करेगा. पिछले साल अभियान ने समुद्री पर्यावरण की रक्षा में नाविकों के योगदान पर प्रकाश डाला था, जबकि 2024 में समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
एंड प्राची, द मैरिटाइम इंडस्ट्री एज वी सी इट्स मोस्टली मेल यू नो ओरिएंटेड, मेल डोमिनेटेड. वुमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन सेवरल पोजिशंस, पर्टिकुलरली लीडरशिप रोल्स. Active steps like maritime education and training institutions are taking to entice women to join. The maritime sector should incentivize gender diversity and inclusiveness, as such diversity could drive not only operational advantages but also empower communities through investment and increased opportunities. Ultimately, it will benefit the national economies, right?
Yes.
The training is long and academically challenging, with topics ranging from astronomy to engines to law, among many others.
बात सही कही है आपने. नाविकों का जीवन वैसे भी सुखद जीवन से बहुत दूर होता है, क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय नाविक नियमित रूप से लंबी अवधि की यात्राएं पूरी करते हैं, जिसके कारण उन्हें एक बार में 9-9 महीनों तक, 10-10 महीनों तक परिवार से, दोस्तों से, प्रियजनों से अलग रहना पड़ता है. हालांकि लंबे समय तक घर से दूर रहने से प्रियजनों के साथ संबंध के साथ साथ मानसिक स्थिति पर भी खासा दबाव पड़ता है.
It's very tough, you know. The life on board ship is tough, and it's often dangerous for seafarers who very often have to endure extreme weather conditions. You know, sometimes it's too cold, especially in the winter months, right? Living conditions have improved over the years, but still cabins are functional rather than spacious, and they vary in quality and comfort. Seafarers, they face long working hours, long contracts, and whilst they are entitled to their own nationality's food, sometimes this is not catered for, you know, sometimes they are not being provided that. Alongside a tough environment, seafarers will sometimes also face notable dangers. These can occur for various reasons, including, as we talked about, extreme weather conditions and even piracy at sea in key places around the world.
एकदम सही बात है. और इस तरीके की बहुत सारी और भी चीजें हैं जिस पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे कि समुद्र में समुद्री डकैती सबसे गंभीर खतरों में से एक है, जिसका समुद्री यात्रियों को आमना सामना करना पड़ता है, क्योंकि भाई अब जो ट्रैवल करेगा तो उसके लिए तो थोड़ा है ही परेशानी वाली बात हो जाती है. ये उनके लिए एक कई बार बहुत ही भयावह अनुभव भी साबित होता है. और कई ऐसी स्थितियां आती हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक, मतलब ये जो एक जो प्रोफेशन है, ये सबसे खतरनाक व्यवसायों में से, व्यवसाय का में से एक माने जाने वाले व्यवसाय में है, जिसको कि मतलब जिसका कोई अभी ऐसा तोड़ नहीं है कि हम इन सब चीजों से हट सके. तो जो लोग हमारे इस प्रोफेशन में काम करते हैं, उसके लिए हमारे दिल में बहुत, उन लोगों के लिए बड़ी रिस्पेक्ट है.
राइट. फॉर करंट सी फेयरर्स, न्यू एनर्जी कैरियर्स एंड अ स्विच टू मोर ऑटोमेटेड एंड डिजिटाइज शिप्स वुड डिमांड रिट्रेनिंग एंड रीस्किलिंग टू अडेप्ट टू द न्यू रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्रियल एंड रेगुलेटेड सेक्टर. For new seafarers, an intellectually rewarding activity with the use of new technologies and in constant need of innovation to accommodate the needs of a carbon-constrained world would attract the best and the brightest.
वैसे अभी जो प्रौद्योगिकी में जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक उन्नत हो रही है हमारी प्रौद्योगिकी, तो उसमें हाल ही में जो प्रगति हुई है, उसमें जहाज जो है वो धीरे धीरे मानव रहित होने की ओर बढ़ रहे हैं. इससे क्या हो सकता है कि एकदम इससे समुद्री यात्रा पेशे के लिए एक खतरा माना जा सकता है. हालांकि ये किसी तरह से पेशे को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वर्षों के एक सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोगों के जो एक समुद्र में अनुभव को कभी घर से कुछ किलोमीटर दूर एक वातानुकूलित कार्यालय में आरामदायक बैठे मशीन या नियंत्रित एक मशीन के द्वारा जो प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, लेकिन समुद्र और हवाएं हमेशा पूर्वानुमानित पैटर्न का पालन नहीं करते हैं, और शिपिंग के लिए मानवीय दृष्टिकोण हमेशा अमूल्य रहेगा। कि अगर एक जो जहाज है वो जहाज अगर कोई मशीन चला रही है तो वो तो मशीन है,
राइट,
उसमें वो सेंटिमेंट नहीं है जो हम एज अ इंसान एक मनुष्य के तौर
पर,
ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो नहीं है। तो पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त विशेषज्ञता में पेशे में आने वाले ये जो लोग हैं उन्होंने भी कई चुनौतियों की को सामना किया है, लेकिन अब देखिए अब इसमें आगे कैसे क्या हो सकता है।
एंड प्राची, इट इज होप्ड दैट बाय होल्डिंग द डे ऑफ द सी फेयरर द जनरल पब्लिक विल बिकम मोर अवेयर ऑफ द रोल दैट द सी फेयरर्स प्ले इन देयर लाइव्स एंड व्हाई दे आर सो फंडामेंटल इन डिटरमिनिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड wide economy, and that's why may the seas be calm and the winds be favorable for all the seafarers, and this is our sincere hope for them.
श्रोताओं, और अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास है क्या विशेष।
एंड वील बिगिन विद जम्मू एंड कश्मीर। There is a trade show in 2024, the Jammu and Kashmir Trade Show 2024, which is a vibrant celebration of innovation, culture and commerce, concluded on high note today at the picturesque Heritage Gardens of Government Arts Emporium in Srinagar. Organized by the Jammu and Kashmir Trade Promotion Organization under the aegis of Industry and Commerce Department, Government of Jammu and Kashmir, this first of its kind event showcased a dynamic convergence of talent and trade, attracting a large number of visitors and participants. We have a report.
The much-anticipated event was earlier inaugurated by Lieutenant Governor Manoj Sinha, who lauded the endeavors of the Industries and Commerce Department and J&K Trade Promotion Organization JKTPO towards promoting the diverse sectors of handicrafts, handlooms, agriculture and horticulture. He reiterated the administration's commitment towards creating a vibrant business and trade ecosystem in the Union Territory and providing new identity to J&K's unique cultural and artistic heritage in the global market. The trade show showcased a multitude of geographical indication tagged products such as carpets, saffron, paper mache, rajma, kani shawls, basoli paintings, pashmina shawls, walnut wood carvings, sozani, sula honey, khatamband and many other exquisite items of Kashmir handloom and handicrafts. Trade show concluded with a grand closing ceremony. The event included remarkable cultural performances celebrating the art and culture of Jammu and Kashmir every day. The Jammu and Kashmir Trade Show 2024 was a resounding success, with exhibitors' sales values exceeding Rs. 1.3 crore and numerous business leads generated. For Parikrama, this is Sunil Kohl from Srinagar.
And now from Jammu and Kashmir on to Nagaland. And in the heart of Thwensang village in Nagaland, a small group of passionate individuals envisioned a future for their youth, aiming to shield them from societal challenges while equipping them with essential life skills. Their vision materialized as the Thwensang Village Sports Foundation, a transformative initiative harnessing the power of sports to instill responsibility, discipline and community spirit. Our next report from our Kohima correspondent tells you how.
Thwensang Village Sports Foundation began in 2019, initiated by Manya Wanto along with the village community leaders of the four kills of Thwensang Village, with an aim to form a football team comprised entirely of local players. Let's hear more from Manya Wanto, chairman of Thwensang Village Sports Foundation.
Thwensang Village Sports Foundation was first established in 2019. Few like-minded and sports enthusiasts gathered together and discussed about the future of the sport, especially in Thwensang district, which is in Nagaland. Focus is from grassroots level, we have to uplift players. We need a channel to become a professional footballer. So that's why we are in search of channels, and we have been trying our best to our limit, taking students for trial even in outside also. And we want national sports club or professional sports club to scout from Thwensang district also.
Since 2020, the foundation had also started football coaching camp to nurture the young budding footballers from Junsang, and this year, on May 23, the foundation has successfully launched its fourth phase of football coaching under Changsang Ongbo, an AFCC and AIFFD licensed coach. At his peak, Changsang represented Nagaland in prestigious competitions such as the Suproto Cup and Dr. T.L. Trophy.
Hi, my name is Changsang Ongbo.
Today, I see Junsang as a struggling place for upcoming young people. I want to make sure that at least from Junsang district, we can produce one footballer who will play in ISL League and hope my dream will be successful.
With Moses Asunyo from Kohima for Parikrama.
And now, we are in Northeast only, staying in Northeast only, we are in Manipur, a land endowed with rich biodiversity with many endemic flora and fauna. It is the home of the rare endangered sangai, abro antelid, deer and shirui lily flower, which are not found in many parts of the globe. However, due to the deterioration of the surrounding environment and ever-changing climate conditions, survival of these rare species has been threatened these days. Our Imphal correspondent reports that the population and size of the shirui lily flower has been badly affected by the deteriorating climatic conditions. More from our correspondent.
The rare and world-famous flower shirui lily is grown only at Shirui Peak in Ukhrul district, which is around 100 km far away from the state capital Imphal. The well-known botanist Mr. Frank Kingdomwood discovered shirui lily flower on behalf of the New York Botanical Society in 1946. The flower is rare because it cannot be transplanted and it is not grown in any parts of the world. Locally known as Shirui Kasung Hill Range, the lone above of shirui flower is located about 15 km in the east side of Ukhrul district headquarters. Shirui is a seasonal flower plant and many tourists usually visit Ukhrul to witness the mesmerizing beauty of the flower during the month of May and June, the best blooming season. Speaking to Parikrama, the subject matter specialist of ICAR KBK Ukhrul, Srimati Jimik Girmaila Sario said that
it has been observed that there has been a sharp decline in the floret size, plant size, growth rate, as well as the plant population of the shirui lily flower of Ukhrul, Manipur. All these are due to the prevailing climate change. Shirui lily as such is a very sensitive temperate crop and is highly affected by the increase in the temperature due to climate change. Another factor may be attributed to the locally found dwarf bamboo variety called maram in the local dialect. The roots of this bamboo are very invasive and hampers the bulbous growth of the shirui lily. Right now, the only measure we can adopt to counter the effect of climate change and the invasive bamboo varieties by adopting certain organic measures by applying organic matter to increase the soil fertility.
Jay Thoksom, Akashvani News, Parikrama, Imphal.
तो आइए श्रोताओं अब आपको ले चलें आजादी के सफर पर.
In today's episode, we remember freedom fighter Sucheta Kriplani, who was born on the 25th of June 1908 in Ambala, Haryana. Sucheta Kriplani was the first woman chief minister of an Indian state, serving as the head of the Uttar Pradesh government from 1963 to 1967.
Although Sucheta was known for her iron will and steadfast leadership capabilities, she confessed to being a shy and self-conscious child. In her own words, it was only after witnessing horrific events carried out by the British occupation, most notably the Jallianwala Bagh massacre, that she developed a zeal for the independence movement and found her voice.
Kriplani studied at Indraprastha College and Punjab University. She chose to become a professor of constitutional history at Banaras Hindu University, as the university played a central role in anti-colonial activities.
At the Banaras University, Sucheta met the well-known freedom fighter J.B. Kriplani, who often visited the campus to recruit volunteers for the freedom movement. Later, the two worked closely on earthquake relief in Bihar in 1934 and decided to get married 2 years later.
But Kriplani was 20 years her senior, and the announcement did not find favor with either family. Gandhiji too wasn't pleased as he felt that family responsibilities might divert Acharya Kriplani's attention from national work. However, Gandhiji later agreed, and Sucheta Kriplani also started joining actively in the Satyagraha marches and soon assumed a leadership role.
Kriplani garnered a public image when she joined the Quit India movement and began working closely with Mahatma Gandhi during the partition riots. She was arrested during the Quit India movement and kept in Lucknow jail till July 1945.
Sucheta's contribution to the freedom struggle was so significant that in 1946 she was appointed member of the Constituent Assembly. She famously sang Sare Jahan Se Acha in the Constituent Assembly on the 15th of August 1947 when India gained independence.
Sare Jahan Se Acha.
After independence, Sucheta remained involved with politics and was elected as Lok Sabha MP in 1952, 1957 and 1967.
In October 1963, she became the Chief Minister of Uttar Pradesh, the first woman to hold that position in any Indian state. Although Kriplani passed away in 1974, she is still revered in India as a symbol of women empowerment.
We also remember independence activist Hassa, a resident of Amritsar, Punjab, who was executed on the 25th of June 1919. Son of Muhammad Sheikh, Hassa was active in organizing the Hartal on the 6th of April 1919 in Amritsar as part of the nationwide call of Hartal given by Mahatma Gandhi to protest against the Rowlatt Act.
Hassa was tried and convicted in the Amritsar Alliance Bank murder case by Martial Law Commission and executed on the 25th of June 1919.
We also remember martyr Videshi Ram, a resident of Santhal Parganas, Jharkhand, who took an active part in the Quit India movement. Videshi Ram was arrested and imprisoned for his nationalist activities, and he died during imprisonment in Dumka jail on the 25th of June 1944.
And now we'll update you about what's happening in the business world. India's equity benchmark indices, Sensex and Nifty, ended in the positive territory today after a firm trading session. The Sensex rose 712 points or 0.92% to close at 75,054. Nifty gained 183 points or 0.78% to settle at 23,721. In the global crude market, Brent crude is trading at $85.63 per barrel. WTI crude is trading at $81.28 per barrel when reports last came in. In the global commodity exchange, for 5th August contract, gold is trading at 71,880 rupees per 10 grams. Silver for 5th July contract is trading at 89,066 rupees per kg when reports last came in.
और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट में सेमीफाइनल्स के मुकाबले तय हो गए हैं. पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बृहस्पतिवार को ग्याना में पिछली बार के चैंपियंस इंग्लैंड से होगा. दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे. अफगानिस्तान पहली बार टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में पहुंची है.
Mm-hmm. More sports news now. India concluded their campaign at the Under-17 Asian Wrestling Championships in Amman, Jordan on a resounding note. The young Indian contingent clinched a total of 11 medals, including 4 gold, 2 silver and 5 bronze medals. Women wrestlers grabbed all the 4 gold medals, Dipanshi in 46 kg, Muskan in 53 kg, Rajnita in 61 kg and Mansi Lathar in 69 kg delivered stellar performances in their respective weight categories to clinch the yellow medal. Raja Bala had to settle for a silver in the 40 kg category despite her valiant efforts. On the men's front, Samarth Gajanan Mahakave bagged silver medal in the fiercely contested 55 kg category, while Akash in 65 kg, Sachin Kumar in 71 kg, Bikash Kachab in 48 kg, Tushar Tukaram Patil in 60 kg and Ronak in 110 kg showcased their prowess by clinching bronze medals.
और अब समय हो गया है उन हस्तियों को अपनी याद में शामिल करने का जिनका आज जन्मदिन है या फिर जिन्होंने आज के दिन हमसे कहा अलविदा.
Today we are remembering none other than Michael Jackson, American singer, songwriter, dancer and entertainer. Jackson influenced artists across many music genres through stage and video performances and popularized street dance moves such as the moonwalk, which he named, as well as the robot. His honors include Grammy Awards, Brit Awards, Golden Globe Awards and Guinness World Records, apart from being inducted in the Rock and Roll Hall of Fame. And now we'll let the music speak by this track, Beat It by Michael Jackson.
मोहन रानाडे का जन्म 25 जून 2019 गोवा की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हुआ था. आज के ही दिन उन्होंने पुर्तगाली शासन के खिलाफ गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था. मोहन रानाडे का जन्म क्योंकि महाराष्ट्र के सांगली में हुआ तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर जो एक महाराष्ट्रियन टेस्ट है वो हमेशा से था. उन्होंने आजाद गोमांतक दल की स्थापना की थी. इस दल के पुर्तगालियों के विरोध किया था इस दल ने और एक आक्रमण के दौरान वे घायल हुए थे. 1955 में उन्होंने पुर्तगालियों द्वारा गिरफ्तार किया गया. उन्हें सामाजिक कार्य के लिए 1986 में गोवा पुरस्कार भी प्रदान किया गया और वर्ष 2001 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया.
Today it's also the birthday of Ricky Gervais, an English comedian, actor, writer who has acted in television sitcoms and movies like The Office, Extras, Life's Too Short, Derek, The Invention of Lying and Ghost Town and many more.
और अब है बात उदयचंद जी को याद करने की. उदयचंद जी का जो जन्म है वो 25 जून को हुआ 1953 में और सेवानिवृत्त भारतीय पहलवान भी थे. कुश्ती इन्होंने खेली. इनका प्रेम था कुश्ती. वे स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता रहे. उन्हें 1961 में भारत सरकार द्वारा कुश्ती में प्रथम अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था. हिसार के आजाद नगर के रहने वाले पहलवान उदयचंद जी जो थे वो देश के पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता रहे. साल 1953 और 70 में वे भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर थे और इस दौरान 1958 से लेकर के 70 तक 12 वर्ष तक नेशनल चैंपियन रहे. कितनी बड़ी बात है. साल 1970 से 95 में हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार में बतौर प्रशिक्षक उन्होंने कई पहलवानों को तैयार किया. 3 बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व भी किया. जापान के योकोहामा में 1961 के आसपास में जो एक रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी उन्होंने कांस्य पदक जीता.
Today is also the birth anniversary of George Michael, English singer, songwriter, record producer known for his creative force in songwriting, vocal performance and visual presentation. And listeners, for you we have this track, Careless Whisper.
Take your hand and lead. और आज मदन मोहन जी का भी जन्मदिन है। 25 जून 1924 में इराक की राजधानी बगदाद में इनका जन्म हुआ और आज ही इनकी जयंती है। इनका पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। अपनी युवावस्था में वे एक सैनिक भी रहे, मगर वो कहते हैं ना कि दिल पर जोर किसी का नहीं गालिब, शायद इसलिए वे बाद में संगीत की ओर उनका रुझान बढ़ा।
तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है।
और श्रोताओं, अब आप हमें इजाजत दीजिए। अगर आप हमें दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.newsonair पर और हमें दोबारा सुनिए।
नमस्कार।